आरती की बात सुनकर आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो इस बारे में सोचने लगता है कि जब उसने शारदा जी को पूरी तरह से पागल करने के लिए अपने इरादे को पक्का कर लिया था तो उसका पहला काम उसे जो करना था वो था सीमा को शारदा के सामने लाना। लेकिन आस्तिक की माँ मर चुकी थी, फिर वो उसे कैसे लाता? तभी उसकी नज़र पड़ी एक पार्टी में आरती पर। आरती एक वॉइस आर्टिस्ट थी, वो अलग अलग तरीके के आवाज़ निकालने में सक्षम थी और सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि आरती की कदकाठी बिल्कुल आस्तिक की माँ की जितनी ही थी, बस उसके बाल थोड़े छोटे थे, तो इसके लिए आस्तिक ने विग का इस्तेमाल किया। आस्तिक ने आरती के बारे में पता करवाया तो उसे पता चला कि आरती के पति इस समय कैंसर से पीड़ित हैं और उनके इलाज के लिए आरती दिन रात मेहनत कर रही है। बस फिर क्या था, आस्तिक ने आरती की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और बदले में उसे वो करने के लिए कहा जो वो चाहता था। आरती ने भी अपने पति के इलाज के लिए उस काम को करना मंजूर कर लिया। आस्तिक अपने ही विचारों में था कि तभी आरती कहती है, वैसे राजा साहब, मुझे ये तो नहीं पता कि वो औरत कौन है जिसके पीछे आपने मुझे जाने के लिए कहा था, लेकिन उस औरत ने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर तो शायद मैं दंग रह गई थी। आस्तिक ने आरती से कहा, ऐसा भी क्या कह दिया था उसने? मैंने वहां तुम्हें बस उसे डराने के लिए भेजा था, कहीं तुमने उसे घायल तो नहीं कर दिया है? देखो, उसे चोट नहीं पहुंचाना है क्योंकि उसके लिए मैंने अलग बंदोबस्त कर रखा है। आरती ने कहा, नहीं राजा साहब, मैं तो उसके पास भी नहीं गई थी, बल्कि मैंने दूर से ही ये चेहरा दिखाकर उसे डराया था और वो आवाज़ जो आपने मुझे कही थी निकालने के लिए, मैंने बिल्कुल उसी आवाज़ में उससे बात की है। पर जब मैं उसका पीछा कर रही थी और उसके घर पर जाकर मैंने उसे डराने का सोचा तो मैं खिड़की के पास ही खड़ी थी, पर इससे पहले कि मैं अंदर जाकर उसे डरा पाती, वो एक तस्वीर से कह रही थी कि उसने सीमा को मार दिया है, उसने सीमा को अपनी हाथ से मारा है। जैसे ही आस्तिक में ये सुना, उसका चेहरा हैरानी से भर गया और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसे जहां तक पता था, उसकी माँ ने फांसी से लटककर आत्महत्या की थी, तो फिर ये शारदा जी किस बारे में बात कर रही है? आरती की बात सुनकर आस्तिक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी और उसका दिल एकदम से रुक गया था। वो बस हैरान चेहरे के साथ आरती को देख रहा था और उसने कहा, क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आरती ने तुरंत कहा, नहीं राजा साहब, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, बल्कि जो मैंने सुना है वही बता रही हूँ। आस्तिक ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है तुम जो कह रही हो उस बात में सच्चाई है? अगर ये बात झूठ निकली तो तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं तुम्हें कितनी बुरी मौत दूंगा। आस्तिक की बात सुनकर आरती के चेहरे पर घबराहट आ जाती है, लेकिन फिर भी वो कहती है, नहीं राजा साहब, आपने बुरे वक्त में मेरी मदद की है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन जब उसने ये बात कही तो मैं खुद भी इतना डर गई थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उसके घर पर जाकर उसे डरा सकूं। उस औरत ने कहा था कि जब उसने सीमा को मारा और सीमा तड़प रही थी तो वो उसका आनंद ले रही थी, उसे मजा आ रहा था उसे मारने में, और सीमा जब तड़प रही थी तो उसने छटपटाते हुए कहा था कि उसे ना मारे, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो मर जाएगी तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे और अनाथों की तरह सारी दुनिया में लावारिस हो जाएंगे। राजा साहब, उस औरत की बात सुनकर तो मैं इतनी डर गई थी कि मैं तो तुरंत वहां से निकल गई और उसके बाद मौका तलाश रही हूँ आपसे मिलने का, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ और उसके बाद पूछ सकूँ कि आगे क्या करना है। आस्तिक गहरी सांस छोड़ता और कहता है, ठीक है, तुमने जो मुझे बताया मैंने सुन लिया है, तुम जाओ यहाँ से, अब मैं देख लूंगा क्या करना है और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। आरती हाँ में सिर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही आस्तिक अपने केबिन में अकेला था, लेकिन उसका पूरा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने अपने हाथों की मुठ्ठियाँ बांधी और टेबल पर जोर से दे मारी, टेबल बीच में से क्रेक हो गया। आस्तिक के हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन उसे इस समय अपने खून की परवाह नहीं थी, बल्कि जो सच उसके सामने आया उस सच की परवाह थी। उसकी माँ कमज़ोर नहीं थी, वो इस तरीके से आत्महत्या करने वालों में से नहीं थी, उसे मारा गया था। आस्तिक को अब पता चला कि पुलिस वालों को कोई सुसाइड साइन क्यों नहीं मिले, क्योंकि उसकी माँ ने सुसाइड किया ही नहीं था। आस्तिक को याद है कि उस दिन जब वो प्रणाली के साथ कॉलोनी में बने हुए सरकारी स्कूल में जा रहा था तो रोज़ की तरह उसकी माँ के चेहरे पर तनाव जरूर था, लेकिन उसने हर वो काम किया था जो वो रोज़ करती थी। प्रणाली और आस्तिक को सुबह का टिफिन पैक करके दिया था, पृथ्वी और प्रीति के लिए बोतल में दूध गर्म किया था और आस्तिक और प्रणाली को स्कूल भेजने से पहले उनके माथी को चूमा भी था और उनके हाथ में दो दो रुपये भी दिए थे ताकि वो स्कूल में कुछ खरीद सकें। अपने साथ हुए हादसे के बाद सीमा थोड़ी परेशान जरूर रहने लगी थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसने खुद को मजबूत कर दिया था। ये दुख इतना भारी था कि सीमा को संभलने के लिए समय तो लग रहा था, लेकिन अपने बच्चों का मासूम चेहरा देखकर वो खुद को फिर से समेटने लगी थी। इन सब को याद करते करते आस्तिक का सिर एक बार फिर से भारी हो गया था और उसके अंदर का मॉन्स्टर फिर से उस पर हावी हो गया था। वो गुस्से में उठता है और उस टेबल पर एक जोरदार लात मारता है। आस्तिक के एक वार से वो टेबल चकनाचूर हो जाता है। आस्तिक गुस्से में शारदा के चेहरे को याद करते हुए कहता है,
तुमने मेरी माँ को जान से मार दिया है शारदा देवी, मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर बना दूंगा। तुम्हें भी वही सब देखना होगा जो मेरी माँ ने देखा है, और तुम्हारी मौत तो इतनी भयानक होगी जितनी भयानक शायद अभय की भी मौत नहीं हुई थी। अभय को तो मैंने सिर्फ 15 दिन तड़पाया था, पर तुम्हें तो हर पल तड़पाऊंगा। कैसे नहीं मारता उसे कमीने इंसान को मैं। सारी फसाद की जड़ तो वही थी ना, उसी की वजह से ये सब शुरू हुआ था, इसीलिए उसका खत्म हो जाना बेहतर था।